शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी प्यार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल
रहती हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान सुबह का वास्ते है, इस गाड़ी से तो दूसरे एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव रिटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल।
30 years of hospitality experience. corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities, Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888, 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca. Chandni!
Here program ek dafa phir se khusham ved mera top of the hour ka waqt bhi hai, but I just have 5-7 minutes and I wanted ki main Geeta Deepa ji se geet bhi sun sakti. Ek aur bada khoobsurat, this is aajkal ki duniya itni ajeeb hai, ye agla geet jo hamara jana hai isi ke upar jana hai ki mamooli si baat ke upar we are so polarized ki kisi ki baat pasand nahi aayi to bas main bhi rishta toot gaya. That's all what it is. Ek zara si baat par barson ke yaarane gaye. ऐसा तो हुआ कि लोग पहचाने गए एक लिहाज से, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जी
नहीं, इसी बात पे मैं, ये तो है ना, ये जो आप गाना बजाने वाली हैं अभी, ये तो है ना मेरा क्या, कई लोगों का एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ना, जैसे आप और मैं अगर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैंने अगर आपके साथ बहुत अच्छी बातें की है या फ्रेंडली रही हूं 99 टाइम्स, एक बार अगर कोई डिबेट हो जाती है जो आपको पसंद नहीं आए, तो अभी ऐसा हो गया कि
रिश्ता टूट गया.
ओवर एंड आउट.
इट्स अ पोलराइजेशन पीरियड, दिस इज 21st सेंचुरी.
मगर मुझे ना, आई एम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड कि जैसे मेरे पेरेंट्स को जब मैं देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं, कितने सालों से उनके वो फ्रेंड्स हैं, 20 30 40 सालों से उनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप्स उन्होंने अभी भी फ्रेंडशिप निभाई है, फ्रेंडशिप्स नहीं कहूंगी, फ्रेंडशिप. तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, और अभी ऐसा क्या है कि जरा जरा सी बात पे हमें ना बातें ही करना बंद कर देते हैं. मेरा तो
मगर आपका जो गीत अभी आपने क्यों किया कि गो जरा सी बात, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, गो इसी बात पे लोग पहचाने गए, इट्स गुड. मैंने कहा इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपको इंसान के खोटे खरे का पता चलता है.
मगर
और मैं आपको बताती हूँ, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. मुझे कभी इसका मतलब समझ नहीं आया था. वक्त के साथ, हालात के साथ जैसे लोग बदलते हैं, मटीरियलिस्ट वैल्यूज हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने हमेशा एक बात एयर पे कही, प्रॉब्लम्स होते हैं, सगे भाई बहनों में प्रॉब्लम्स होते हैं, एक माँ की कोक से जिन्हें बच्चों में प्रॉब्लम होती है, मगर वो माए, आई एम अ वुमन, बट आई थिंक वो माए जो अपनी औरतें, वो औरतें जो अपने बच्चों को के दिमागों को कंटेमिनेट करने के लिए चचा और फूफी की बुराई बच्चों से कर देती हैं, या अपने भाई बहनों की बुराई कर देती हैं. मैंने तो बीइंग अ वुमन अब कितना अरसा जिंदा रहना है, बट दिस मीन कि आई हैव सोड दैट सीड टू द नेक्स्ट जनरेशन कि मेरी एनिमोसिटीज, दुश्मनियां चलती चली आ रही थी, अब तुम लेके अगली नस्ल की तरफ चलो. सो आई बिलीव के वो पेशेंस लेवल नहीं था. एक जमाना था कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स हुआ करते होते थे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते होते थे, हम एक दूसरे की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया करते होते थे. बट नाउ टू प्रूव माई सेल्फ आई एम द बेस्ट एंड आई एम यू नो एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग, तो वो एक औरत जो है कभी अपने हस्बैंड की बेटी से बुराई करती है, एक आदमी अपने बेटे या बेटी से अपनी बीवी की बुराई करता है, एक औरत अपने बेटे या बेटी से अपने इन लॉज की बुराई करती है, या अपने बहन भाइयों की बुराई करती है. इसका मैं ये कहती हूँ कि इस बच्चे ने और इस बच्ची ने कल कलां को जब बड़े होना है, शी विल बी अ स्लैप ऑन मदर्स फेस. यू नो व्हाट, तुम मेरी बीवी के साथ अच्छी नहीं हो, तुम तो अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छी नहीं थी.
बिल्कुल.
अगला गीत हम जो सुनाने से पहले, आई विश कि आप मुझे कोई गीत, एक और गीत हो जाए गीता की तरफ से, मतलब गीता दीपा जी की तरफ से, एंड आई विश कि दीपा जी एटलीस्ट एक दो स्टैंजर्स तो शेयर करें ना, कोई भी आपका जो पसंदीदा गीत है उसका.
मुझे गीत इतने, कई सारे गीत है मेरे पास, तो पूरा कलेक्शन.
चलिए एक सुना दीजिए.
नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि ना मुझे लिरिक्स है ना, मूवीज के गानों के लिरिक्स कभी याद नहीं रहते.
गिव अस एनी अदर सॉन्ग,
आप वो प्ले कीजिए, फिर ना इन द मीन टाइम में फिर मैं जरूर गाऊंगी.
आप तमाम के नाम मत फिक्र कीजिएगा, अगर कभी किसी से दोस्ती है और वो छोटी सी बात पे नाला हो गया तो लेट इट गो.
क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया, दोस्तों का प्यार पहचाना गया. बरसों का याराना गया। क्या सुनाए हम किसी को प्यार की ये दास्तां, क्या सुनाए हम किसी को प्यार की ये दास्तां, प्यार की ये दास्तां, जान जान को है बाकी दिल तो दीवाना गया। क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया। उनका उनके गम कैद अब करे अफसोस क्या, उनका उनके गम कैद अब करे अफसोस क्या, अब करे अफसोस क्या, जिसको आना था वो आया, जिसको था जाना गया। क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया।
नाबे आलम दीपा जी हमारे साथ हैं। और दीपा जी क्या हुआ एक बात पर बरसों के याराना गया, बहुत खूबसूरत के दोस्त पहचाने अमित कुमार और फिल्म तेरी कसम से ये गीत है, इसी का गाना था तेरी कसम, हमको तेरी यादें जो आती हैं तो आती हैं, आई थिंक देयर वाज सम सॉन्ग लाइक दिस। एनीवे अब दीपा जी आप हमें कौन सा गीत सुना रहे हैं?
आपने वो गाना सुना है चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर
पीना तो पीने ना दिया।
बिल्कुल
प्लीज।
चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को
तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाह कर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी।
बहुत शुक्रिया दीपा जी से आज की मुलाकात रही, बहुत ही अच्छा लगा। हमारा अगला सेगमेंट भी अब आने का है, आप इसी तरह प्रोग्राम के साथ रहिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद जनरल गुलाम मुस्तफा हमारे साथ शामिल होंगे, जिसमें हम ईरान की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। दीपा जी आपको बहुत 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 बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड फिर मिलेंगे
इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा मुलाकात होगी। दीपा जी से मैंने मुलाकात कराई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे स्पॉन्सर्स को जरूर ताबन दीजिएगा। बड़ी ड्यू डिलिजेंस के साथ हम उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आई वी डोंट एडवर्टाइज एनीथिंग रॉन्ग। से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर अपने घर का अंदर बाहर का पेंट करवाना है तो मोहम्मद सलीम से आप रब्ता कीजिए 9064727117427111974। अगर आपने रकम पाकिस्तान भिजवानी है तो मेगा मनी एक्सचेंज आज भी 7 बजे तक खुले हैं, आज डॉलर का रेट 209 रुपये आपको मिलेगा 9052794754। और अगर आपका दिल चाह रहा है कि पाकिस्तान की खुशबू लेने के लिए, आई मीन अगर पाकिस्तान के आम खाने हैं, जामन खाने हैं आपने, या खरबूजे अगर आप खाना चाहते हैं, या और क्या चीज़ है फालसा अगर आप खाना चाहते हैं, बहरहाल आम तो क्या बात है और जामुन भी बहुत अच्छे, फातिमा ग्रोसर्स पे पहुंचिए 512 ब्रिस्टल, ये ब्रिस्टल और मैक्लॉकलन के इंटरसेक्शन पे फातिमा ग्रोसर्स। कादिर भाई आपके मुंतजिर हैं, जरूर जाइएगा फातिमा ग्रोसर्स। अगर आप के ट्रक्स हैं तो क्विक ट्रक ल्यूब के नाम को याद रखिएगा, क्विक ट्रक ल्यूब तमाम जो एंट्रेंसेज हैं फ्रॉम अमेरिका टू कैनेडा आपको वहां पर मिलता है क्विक ट्रक ल्यूब। जस्ट 40 मिनट्स में आपके ट्रक का फिल्टर चेंज करना, ऑयल चेंज करना, तमाम उसकी ओवरहॉलिंग हो जाती है। क्विक ट्रक QTL के नाम से QTL 519-622-0660 उनका नंबर है। पायल ज्वेलर्स का भी नाम याद रखिएगा, अगर आप जेवर खरीदना चाहते हैं तो पायल ज्वेलर्स, ये ब्रैम्पटन में नॉर्थ पार्क एंड टूरब्राम का इंटरसेक्शन है, पायल ज्वेलर्स आप जरूर जाइएगा। मैं आपके साथ दो एक कमर्शियल शेयर करूं क्योंकि हम टॉप ऑफ द आवर भी नहीं ले सके। बटाला सुपरमार्केट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। बटाला सुपरमार्केट टुडे इज थर्सडे, नो आज वेंसडे है, वेंसडे टुमारो इज थर्सडे फ्राइडे, सो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे पॉज योर ग्रोसरीज। उसकी वजह यह है कि फ्राइडे सैटरडे एंड संडे से एक सेल शुरू होने लगी है बटाला सुपरमार्केट। सिंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डू टू सेल्स, एक रमजानुल मुबारक की सेल होती है और वन सेल इज एनिवर्सरी सेल होती है। और हकीकत में यू विल एंड अप सेविंग, अगर आप अपनी वीक की या मंथ की ग्रोसरी करते हैं, खुला पैसे आप सेव करके आएंगे। बटाला सुपरमार्केट पे जाना, वहां पे भी पाकिस्तान के आम आए हुए हैं, पाकिस्तान के आम, फालसा, जामन वगैरह, मिठाइयां आप ले सकते हैं। अब ये देखिएगा, मैं बल्कि भी देख रही थी कि अगर आपने शान के मसाले लेने हैं तो शान के मसाले 149, 299, 289, 199 प्राइस होती है शान के मसाले। चीनी आप देखिए 299, हालांकि 379 इसकी प्राइस होती है। चावलों पर बहुत सुपर सेल लगी हुई है। और अब ये देखिए, अगर आप ये हमारे क्लासिक बासमती राइस की देख लें, नॉर्मली $15 का है, हालांकि $15 का है मगर $11.99 का आपको मिल रहा है कहां से, बटाला सुपरमार्केट से। ये है स्कारब्रो में, आप कह सकते हैं मार्कम एंड एग्लिंटन के इंटरसेक्शन, राइट एट द कॉर्नर 200 मार्कम रोड पे, नंबर उनका 416-264-3111-264-3111-2611। चंद टॉप ऑफ द आवर का वक्त हुआ जाता है, मैं उनको लेना चाहूंगी और उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ। शुक्रिया हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जो हमें तावन देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गिव अस ए चांस टू एडवर्टाइज योर बिजनेस। स्टूडियो का नंबर 416-620-1778। शाहजी से भी मैंने आपकी बात करानी है, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, मगर you know I'll fight till the end, yes I will fight till the end.
ताजा सब्जियां ली तुहाडा अपना फार्म कैलगर सब्जी फार्म जिथे तुसी लै सकदे हो निखरे पौधे मिट्टी गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाण लई कैलडन सब्जी फार्म ते आओ असी सवेरे 9 बजे तो शाम 8 बजे तक तुहाडी सेवा लई हाजिर हां 12050 एयरपोर्ट रोड कैलडन या तुसी फोन करो 905-840-9000 905-840-9000
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
कोई बात सादा सी है हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773
जी साहब प्रोग्राम में एक बार से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ नासिर शाह साहब मेरे साथ हैं नासिर शाह साहब देखते हैं आज क्या बात करने जा रहे हैं शाजी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू
जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है प्रोडक्ट ठीक हो
अल्लाह का बहुत शुक्र है शाहजी वो कहा ना कि बाज़ुकात अपने भाई बहनों को इंतजार करते करते आंखें थक जाती हैं तो शायर ने क्या कहा कि वो वादा ही किया जो वफा हो गया हम तो पिछले हफ्ते से आपका इंतजार कर रहे थे आपने इस हफ्ते मुलाकात का वादा किया था और मुलाकात नहीं हुई
जी क्या बात है आप तो इशारा बन गए तो
आप भी बड़े टेक्निकल हो गए आप भी सियासतदान बन गए शायद जी मुझे बताइएगा आज लोगों को आप नासिर शाह साहब की किस अचीवमेंट के बारे में बताना चाहते
जी मैं पहले तो आज अपने जो मॉर्गेज जो मेरी एक्सपर्टी है पिछले 26 सालों से मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहूंगा पिछले 26 ईयर से मॉर्गेज लोन्स कर रहे हैं और ऑलवेज ऑन एयर कहते हैं भाई पहले घूमो फिरो चेक करो और आखिर में मुझे कॉल करो इसका कहने का मकसद क्या होता है कहने का मकसद है आपकी तसल्ली होनी चाहिए जब तक आप हमारे पास आए आपको पता होना चाहिए फलां बंदा या फलां बैंक आपको क्या ऑफर कर रहा है आप कोई भी रिटर्न प्रूफ ले आए हम गारंटी के साथ उस इंटरेस्ट रेट को बीट कर देंगे अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाजी हमारा जो हम कहते हैं कोशिश यही करते हैं अल्लाह के हुक्म से वो करवाते हैं या करते हैं क्योंकि इसकी रीजन पीछे क्या है कि हमारा एक्सपीरियंस बोलता है और प्लस हम वॉल्यूम बिजनेस कर रहे हैं जब भी कोई वॉल्यूम बिजनेस कर होता है हर लैंडर की कोशिश होती है आपके साथ जुड़े रहे हमारी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके अपने क्लाइंट्स को दिलाई जाए अब पहले बात करते हैं कमर्शियल मॉर्गेजेस की कोई भी अगर आपने होटल मोटल गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी है या प्लाजा लेना है या प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है तो उसके लिए आप हमें कॉल करें 6477419000 अब दो चीजों का हम बहुत ध्यान रखते हैं एक तो इंटरेस्ट रेट की मैं भी बात कर रहा था भी हम गारंटी करते हैं ऑन एयर और सेकंड जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो है टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट के पीछे भागते हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनका बिल्कुल नहीं देखते ना पढ़ते हैं। हम मेक श्योर करते हैं जब भी हमारे पास कोई आता है वो दोनों सूरतों में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, भाई इसका ये 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 है और इसको ऐसे हो सकता है आपको कल को ये नुकसान होगा, ये कल को ये फायदा होगा। तो उससे क्या होता है क्लाइंट की तसल्ली होती है, वो दोबारा भी आता है और 20-25 साल पुराने क्लाइंट बाजी मेरे पास रिपीट हो रहे हैं ओनली बिकॉज इसी वजह से भी, क्योंकि लोग बार बार आते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी तसल्ली मैं करवा के भेजता हूँ, भाई आपकी ये तसल्ली हो गई है और आपका ये काम इस तरह हम करेंगे। तो नंबर बहुत इजी है 6477419000। और अगर आपने घर बुक करा रखा है, कोई भी मॉर्गेज लेनी है, अगर रीफाइनेंस कराना है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल करें, तो रेट के साथ इंटरेस्ट रेट की भी गारंटी कर रहा हूँ, वो भी दोनों सूरतों में आपको हमारे पास अगर आते हैं आपको फायदा पहुंच सकता है। और इसके अलावा भाजी अगर आप कोई भी 5 लाख तक बिजनेस करना चाहते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल बिजनेस लोन भी कहते हैं और गवर्नमेंट गारंटी लोन भी कहते हैं। इस लोन की खूबी क्या, आपकी पर्सनल गारंटी सिर्फ और सिर्फ 25% है। अल्लाह ना करे अगर आपका बिजनेस नहीं चला किसी वजह से, ना तजर्बेकारी है, कोई भी रीजन हो सकती है, अगर आपको बिजनेस बंद करना पड़ गया तो सिर्फ और सिर्फ 25% वापस करना है और 75% तक गवर्नमेंट ने माफ कर देना है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर आप 25% वापस करते हैं उसके बाद आपको बैंक्रप्सी की जरूरत नहीं पड़ती, आपका क्रेडिट बच जाता है, ये विन विन सिचुएशन। आप ये कह लें थोड़े से रिस्क के साथ एक आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बेशक आपने कोई ग्रोसरी स्टोर खोलना है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई भी अगर आपने कोई फ्रेंचाइज लेनी है या आपने कोई डॉलर स्टोर खोलना है या इंडस्ट्री लगानी है, तो आप हर सूरत में आप हमें कॉल करें 6477419000। 5 लाख तक आपको लोन दिला सकते हैं और इसे कहते हैं गवर्नमेंट गारंटी लोन। और इसके अलावा लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो माएं बहनें घर से बैठ के बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए खुशखबरी ये है 50,000 से लेके 100,000 तक आपको लोन आजकल मिल रहा है। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, ये कभी भी बंद हो सकता है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल करें, हम आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपको ये लोन दिला सकते हैं। फिर आप घर से बैठ के बेशक आप ज्वेलरी का काम करें, कपड़ों का करें, आप ब्यूटी सलून खोल लें, कुछ भी कर सकते हैं, केटरिंग का काम करें, तो आप घर से बैठ के ये काम कर सकते हैं। नंबर बहुत ईजी है 6477419000। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं 2 साल से और बिजनेस को बेटर करना चाह रहे हैं, 50,000 से लेके 2 मिलियन तक बिजनेस लाइन चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल करें 6477419000। जी बाजी
शाह जी, नंबर एक बार फिर से दे दीजिएगा और इसके बाद नासिर शाह साहब से मुलाकात करें। हमारा अगला इंटरव्यू जनाब जनरल गुलाम मुस्तफा साहब के साथ होगा। इन्हीं स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जिनके तवसुत से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश करते हैं। नासिर शाह साहब, बड़ा अच्छा कि खवातीन अगर आप अपना घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो यू कैन गेट अ लोन, कॉल नासिर शाह, इट नो एप्लीकेशन, आपसे बातचीत करेंगे। शाह जी नंबर एक बार फिर से दे दीजिए प्लीज,
6477419000। बहुत इजी नंबर है, 647 तो बोलने वाला नहीं होता, 741 याद रखना है, 9000 भी भूलेगा नहीं, 6477419000 पे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाजी आपका,
7419000। वैसे भी अगर आपको जरूरत होगी ना, मैं फिर शाहजी तक आपको ले जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, आप बात करके देखिएगा। एक और अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अप टू 500,000 तक, इसमें 25% आपकी गारंटी होगी, 75% ऑफ कोर्स फॉर द बिजनेस। अल्लाह आपके बिजनेस को कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। आइए साहब लेकर के चलती हूँ आपको शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब से मुलाकात कराई, एक इंटरव्यू की तरफ लेके चलती हूँ। मेरे साथ इस वक्त हैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, वी रिकॉर्डेड इट्स ऑल अबाउट ईरान एंड इसराइल एंड दुनिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है। जनरल गुलाम मुस्तफा के बारे में बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको इन्होंने सुपरवाइज किया, इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, हैज लॉट मोर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, पाकिस्तान की इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में कितने इन्वॉल्व थे। तो जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से बात करते हैं, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, और आपको याद होगा 20वीं सदी के बाद मैप चेंज होने का और खासतौर पर मिडल ईस्ट का मैप चेंज होने की बाजगश सुनाई दी थी आपको, और यकीनन उसको तकमील के मराहल में से इस वक्त गुजारने के प्रोसेस में है। جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اس وقت بہت سارا آپ نیوکلیئر پروگرامز کے بارے میں، ایٹم بامبس کے بارے میں سن رہے ہیں، ایران کے اوپر جو چیزیں لگ رہی ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے جب اپنا نیوکلیئر پروگرام کیا تھا تو آپ نے اس کی بے شمار چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے ان لوگوں کو انٹرنیشنلی بھی ساری اویئرنیس ہوتی ہے. تو جن صاحب، سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم.
بہت شکریہ میں نے مجھے بلانے کا. سوری دی پلیجر ٹاکنگ ٹو یو ان یور پروگرام.
ویری کائنڈلی سر. سر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بیسویں صدی سے یہ بات گشت سن رہے ہیں کہ وہ سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کہ اس علاقے کا بالکل روڈ میپ چینج ہو جائے گا، اور اب اسرائیل کی ایک عرصے سے خواہش تھی کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے، ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے. آج ہم چھٹے ساتویں دن میں داخل ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا آپ اس کو بریف کر دیجیے گا، کچھ بتائیے اس کے بارے میں.
دیکھیے اسرائیل کا اس خطے میں قیام، خیال ہے وہ ایسا واقعہ تھا کہ ناجائز طور پہ جس ملک کو کریٹ کیا گیا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. سارے جیو جرنلزم جس نے کام کیا، اس کے بعد سے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹربلنس ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا گئی. اس وجہ سے آج آپ جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جس نے بغیر کسی سے پوچھے بتایا اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور بنا لیا، کسی نے اسے پوچھا نہیں، کسی نے اسے بتایا نہیں، جنہوں نے یہاں تک کہا کہ غزہ کے جو بےچارے نہتے مسلمان بچے بچیاں ہیں، بزرگ ہیں، ان کے اوپر ہم نیوکلیئر بم چلا دیں گے، جنہوں نے این پی ٹی پہ سائن نہیں کیا، اور جنہوں نے غزہ کے بارے میں جتنی بھی نیشنل اپنا یو این او کی سیکورٹی کونسل کی قرارداتیں تھیں، جو بھی مذمتی تھا، کسی کو پرواہ نہیں کی، وہ چلتے جا رہے ہیں. اس میں بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں غزہ کو ہم نے ختم کر دینا ہے، غزہ کو ہم نے ختم کر دینا. ایک تو یہ بڑی چیز سمجھنے کی بات ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ گزشتہ دو تین دہائیوں سے ایک قدم بقدم چلتے ہوئے، جس کو یہ اسلامی اپروچ بھی کہا جاتا ہے ملٹری ٹرمز میں، ایک ایک کر کے وہ مسلمان ملک جن میں تھوڑا بہت دم تھا یا جو کبھی کبھی مغربی دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا. عراق، لیبیا، سیریا کا آپ کے سامنے اشارہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں بھی رجیم چینج کر دیا ہے انہوں نے، اب وہ حکومت لے آئے جو ان کی مرضی کی ہے. باقی آپ جارڈن کے بارے میں کسی کو شک رہ نہیں گیا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے الجیریا کے ساتھ کیا کیا. یہ فرانس جو آج چیمپئن بنا ہوا ہے دنیا میں ہیومن رائٹس کا، 15 لاکھ سے زیادہ الجیریا کو انہوں نے شہید کیا صرف اپنی صدر رکھنے کے لیے وہاں پہ. پھر جب ایک ویسٹ بینک کی وہاں پہ جو ویسٹ جو مغربی دنیا کے خلاف جو کام سوچ رہے تھے لوگ، جو دائیں بازو کی وہاں کی جماعت تھی، وہ بڑا کلیئر الیکشن جیت گئے، ان کو حکومت نے بنانے دی. تو اب آ جا کے اس خطے میں آپ دیکھیے گا کہ رہ کیا گیا ہے. اگر یہ غزن جو جس طریقے سے مسئلہ کھڑا ہوا اگر یہ نہ ہوتا، اور شاید سعودی عربیہ کے اسرائیل کے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہوتے، یو ای کوالٹی قائم ہے، اس میں دریائے کوالٹی قائم ہے. تو اس خطے میں آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل کی بردستی کو بڑھانے کے لیے، اس کی سیکورٹی انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے امریکہ، مغربی دنیا نے پورا زور لگایا، اور آج بھی وہ اسی طرح کے ساتھ کھڑے ہیں، جس میں امریکہ سر فہرست ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، باقی مغربی طاقتیں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. اس میں وہ آ جا کے رہ کیا گیا تھا راستے میں. ایران کے اوپر حملے کی اسرائیل کی خواہش تو پہلے عرصے سے تھی، امریکہ کے اندر سے نیو کونز ہیں وہ بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ وی ہیو ٹو گو فار ایران. اور ایران کے اوپر آپ دیکھیے کہ جب سے ان کا یہ انقلاب آیا ہے، اس کے بعد سے سینکشنز ہی لگی رہی ہیں ایران کے اوپر، ان کو کبھی اس نے سانس لینے دیا نہیں گیا. اور یہ تقریباً سن 2000 آنورڈز میں یہ میں جانتا ہوں کہ ان کے رجیم چینج کے لیے امریکہ اور ساری دنیا مل کے کوشش کرتی رہی کہ اسی طریقے سے یہ جو ان کی حکومت ہے اس کو بدل کے ان لوگوں کو لایا جائے جو مغربی دنیا کی بات چیت سنیں، ان کے مطابق کام کریں. اس کا پھر ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو ایک مسئلہ بنا لیا گیا، حالانکہ ایران نے این پی ٹی میں سائن کیا ہوا ہے. ایران نے کبھی کسی کو نیوکلیئر اٹیک کی دھمکی نہیں دی، اور اوباما صاحب کے ساتھ مل بیٹھ کر انہوں نے ایک باقاعدہ معاہدہ سائن کیا تھا، اس کے تحت ایران کی جو سینٹریفیوج سسٹم تھا وہ اٹھا کے رشیا لے گیا تھا تاکہ ایران نیوکلیئر پاور نہ بن سکے. اس کو ٹرمپ صاحب نے پچھلے دور میں آتی اکثر ختم کر دیا. سینکشن بھی لگی ہوئی ہیں ان کے پاس, کچھ رہنے بھی نہیں دیا گیا. اب آ جا کے جب اسرائیل کو دیکھا کہ اس کو موقع ہے ان کے پاس, انہوں نے باقاعدہ چڑھ دوڑے اس کے اوپر, اور جو حملہ کیا گیا ہے اس میں باقاعدہ چن چن کر جو ایرانین ملٹری لیڈرشپ تھی یا ان کے جو سائنٹسٹ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. یہاں بھی بتاتا جاؤں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی جو ایرانی سائنٹسٹ تھے ان کو شہید کیا گیا ایران کے مختلف حصوں میں, اور جو ایران کے جو نیوکلیئر اس نیوکلیئر پروگرام کے تحت ایک دو جو فیسلٹیز تھیں ان کو تباہ کیا گیا. اب ان کا خیال یہ تھا کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم باقاعدہ چڑھ دوڑیں اس کے اوپر, کیونکہ دنیا میں جو پاور سسٹم ایک فلکس میں ہے, روس پھنسا ہوا ہے یوکرین میں. ان کا خیال یہ ہے کہ روس شاید یوکرین کے جنگ کی وجہ سے ایران کا ساتھ نہ دے سکے, کیونکہ روس کا اور ایران کا باقاعدہ معاہدہ بھی ہے, اور آپ دیکھیے نقشہ دیکھیے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایران ایک قسم کی روس کی انڈر بیلی ہے. روس کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایران میں ایسی حکومت آئے جو کل کو اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو یا اس کے ساتھ بات چیت نہ ہو سکے ان کے ساتھ. چین کا ان کا خیال یہ تھا, چین بہت دور بیٹھا ہوا ہے, چین نے حالانکہ کے ساتھ 400 ارب ڈالر سے زیادہ کے معاہدے کیے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ, اور جب یہ لیٹسٹ سینکشن لگی ہیں آئل امبارگو بھی لگا ہے, تو چین وہ واحد ملک ہے جنہوں نے باقاعدہ اس امبارگو کو توڑا بھی ہے, اور ایران کا 40% زیادہ تیل چین امپورٹ کر رہا ہے. تو اب اس سارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ فلکس میں ہے, اور چین کو ان کا خیال تھا تائیوان کے علاقے میں پھنسا ہوا ہے, اور پچھلے دنوں جب ایک میں 7 سے 11 مئی تک بھارت پاکستان بے چڑھ دوڑا تھا, ان کا خیال یہ تھا اس کی وجہ سے چین شاید آگے نہیں آ سکے گا. تو اب وہ موقع تلاش میں تھے, انہوں نے حملہ کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ماریں گے بھی تو آپ روئیں گے بھی نہیں. ایران کو وہ کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہے. نتنیاہو صاحب فرما رہے ہیں کہ میں انہیں ایران پر حملہ کیا ہے سارے مڈل ایسٹ کو بچانے کے لیے, یورپ کو بچانے کے لیے, امریکہ کو بچانے کے لیے. اب جب پرسوں تل اویو پہ باقاعدہ حملہ ہوا اور ان کو کافی نقصان پہنچا, انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ آج تل اویو ہے تو کل نیو یارک ہو سکتا ہے. تب کیا وہ خود ایک انٹرنیشنل پولیس مین کا کردار بنے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کی مرضی سے ہوگا جو ہوگا کسی سے, باقی دنیا میں کسی کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے, اگر رہے تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ. اب بتائیں ایران کرے تو کیا کرے اس میں. ایران کے پاس چونکہ سینکشن لگی ہوئی تھی, ایئر پاور ان کی تقریباً ناپ ہونے کے برابر ہے, ان کے پاس ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ بھی اتنا زیادہ وہ اسٹرانگ نہیں تھا. انہوں نے باقاعدہ 200 جہازوں سے حملہ کیا. اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے, اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس دوران ان کو 2-3 چیزیں یہ مغربی دنیا بھول گئی تھی کہ نمبر ایک, ایران کو اپنی کمزوری کا اندازہ تھا, انہوں نے اس کمزوری کو کور کرنے کے لیے اپنے میزائل پروگرام کو ٹیکنیکلی اپنے آپ کو اتنا ایڈوانس کر لیا ہے اس سلسلے میں. ان کا میزائل پروگرام جو تھا وہ سکسیسفل بھی ہے نظر آیا بھی آج آپ کو, اور اس میں ورائٹی آف میزائل بھی بنے اور ایسے ایسے میزائل بنے جن کا آج اسرائیل کو سامنا ہے اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے. اب ایئر پاور کے مقابلے میں میزائلز کا جو مقابلہ ہوا ہے ابھی, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اسرائیلی ایئر فورس نے نقصان کیا وہ اپنی جگہ پر ہے, کافی نقصان ہوا ایران کا. لیکن جو ان کے اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھے وہ دو ہیں ان کے, ایک تو کہ ایران کے جو نیوکلیئر کیپبلٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے سائنٹسٹ کو بھی مارا شہید کیا گیا اور ان کی نیوکلیئر فیسلٹی کو اٹیک بھی کیا گیا نیٹس میں. لیکن اب سامنے جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کوئی نیو نون جو ویپن سسٹمز ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اتنے ڈیپ ڈاؤن جا کے جتنا ایران نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے پروگرامز کو ڈگ کر کے پہاڑوں کے اندر, چاہے میزائلز ہوں چاہے وہ ان کا نیوکلیئر پروگرام ہو. دوسرا ان کا رجیم چینج کرنا ہے. اب رجیم چینج کرنے کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا 2000 سے کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کوششوں کا نتیجہ ابھی تک تو نکلا نہیں ہے. اب رضا شاہ پہلوی کے جو صاحبزادے ہیں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے, اور یہ عام طور پہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ایران میں ویلکم ہوں گے. دیکھیے ایران کے جو رجیم ہے اس کے بارے میں ہر لوگ ہر کسی کا اپنا خیال ہو سکتا ہے, مجھے شاید پسند ہو یا نہ پسند ہو, لیکن وہ ایران کے رجیم ہے, ایران کے لوگوں کا فرق ہے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. وہ آج جب ایران پہ حملے ہوئے ہیں اور ایران نے جب इसराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसराइल ने जब चिल्लाना शुरू कर दिया है, इन हालात ने क्या ईरानी अवाम इस लीडरशिप को चेंज करना चाहेगी, खासतौर पर जब वो देख रहे हैं कि बाकायदा की मिलिट्री लीडरशिप भी, इनकी जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है उसको भी, जो साइंटिफिक लीडरशिप है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, और अब बाकायदा उनके जो सरबराह हैं आयतुल्ला खमेनी उनको बाकायदा थ्रेट कर दिया गया है, और अभी मैं पढ़ रहा था कि उनकी जिंदगी को भी खतरा है। तो जब ये सब कुछ ईरानी अवाम देख रहे हैं, तो क्या वो एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है कि वो मगरबी दुनिया का पिट्ठू है, उसको वो कबूल कर लेंगे? तो रिजीम चेंज का भी मेरा ख्याल है इनका ये ख्वाब है, वो अब ख्वाब शायद पूरा होने में इनको बहुत वक्त लगेगा, शायद अभी तक वक्त नहीं आया, वो मेरा ख्याल है कभी आएगा भी नहीं।
बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी तफसील से कहा। जाहिर है इराक इस वक्त, इराक में भी रिजीम चेंज करवाया गया और जो सूरत हाल बाद में सॉरी भी किया गया कि यानी उनके पास बायोकेमिकल वेपन्स नहीं थे। लीबिया, उर्दन, अल्जीरिया, उर्दन तो आई डोंट नो, उसके तो लीडर जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिलने भी आए थे, अपने बेटे को भी वो बादशाह। मुसलमानों की सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो अपने बच्चों को भी आला पोजीशन और जायदादें और बादशाहतें लेके देना चाहते हैं। इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्ट में भी जो सीसी हैं ही वाज अमेरिका में ही थे, और उसके बाद फिर किस तरह हादसे में सारे मर गए, सीसी बच गए बिकॉज ही हैड टू बी अपॉइंटेड इन 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 मिस्र में उन्होंने अपॉइंट होना था। एक चीज और सर मेरे दिमाग में आ रही है कि ईरान में इन्होंने बहुत बार रजीम चेंज किया। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट कि 1953 में इन्होंने जब पहली बार किया है जिसमें अतातुर्क को लेके आए थे, फिर जब इमाम खमीनी भी आए थे और अतातुर्क को जब निकले थे, मेरा ख्याल है तब भी इन लोगों ने सपोर्ट किया था। मकसद सिर्फ ये था कि ईरान को अनस्टेबल फॉर्म में ही रखा जाए। आज फिर अगर रजीम चेंज किया जा रहा है, G7 की मीटिंग हुई कनाडा में और जो हमारे जर्मनी के लीडर हैं उन्होंने कहा कि ईरान के जो मुल्ला है ना, इनको बड़े डिग्रेटरी वर्ड्स उन्होंने यूज किए जिसमें उनका यही था कि ये एक चीज ख्याल में भी आती है कि ऑटोमन्स जब गिरे थे तो यूथ जो थी वो ऑटोमन्स के अगेंस्ट थी क्योंकि रिलीजन से थोड़े हट गए थे। मुस्तफा अतातुर्क ने बड़ी सही टेक्नोलॉजी रखी थी, मतलब स्ट्रेटजी थी उनकी कि उन्होंने यूथ को अपने साथ मिला के मॉडर्नाइजेशन टर्की में दे दी थी और फिर टर्की किसी का हिस्सा भी ना बना। ईरान में अंदर से जो मुखबरी हुई है, इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए ईरान में जो अंदर से मुखबरी हुई है, क्या ये वाकई मोसाद के अरकान थे जो ईरान के अंदर बैठे हुए थे? और अगर वो थे तो ईरान को क्यों पता ना चला कि ये इक्विपमेंट भी इन्होंने स्मगल किया ईरान में, इन्होंने ड्रोन्स भी ईरान में बैठ के, तो क्या वो ईरान को क्यों पता ना चला? या ऑन द अदर हैंड, क्या वहां की यूथ है जो रजीम चेंज के लिए बाहर के मुल्कों के हाथ में खिलौना बन गई है और ईरान को अंदर से बिठे हुआ है, यानी मुखबरी की गई है?
देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से ईरान के 2 बड़े स्ट्रेटजिक डंडर्स हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने हिजबुल्ला को होल्ड किए रखा, अब हिजबुल्ला दोबारा उन्होंने सर उठाने शुरू किया है और अभी रिपोर्ट है कि हिजबुल्ला बाकायदा इसराइल पे हमले भी शुरू कर रहा है। दूसरा, उन्होंने क्योंकि भारत के साथ ईरान के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सरजमीन को भारत के हवाले करके और भारत को ये खुली छुट्टी दे दी गई या उस पर नजर नहीं रखी गई या वो भारतीयों के हाथ में खेलते रहे, जिससे भारत ने एक न सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया उस सरजमीन को, बल्कि अब ये जो पिछले दिनों 73 जो लोग पढ़ गए उसमें 13 भारतीय थे उसमें से, और बाकी जो थे उनमें से जो गैर भारतीय पासपोर्ट पर कोई गैर मुल्की भी पकड़े गए हैं वहां पर। तो ये साथ का जो लिंक है, और दूसरा ये मत भूलिए कि ईरान में बहुत सारे जोश आबादी भी है वहां पे, और वो भी नेचुरली होस्टाइल है उसके लिए, तो ये सारे एलिमेंट्स काम कर रहे थे बीच में। फिर ईरान के रिजीम के अंदर भी ऐसे अनासर हैं जो बिकॉज ऑफ पावर स्ट्रगल तो हर जगह जारी होती है। ये सारा एक ऐसा नेटवर्क था जो स्ट्रेटेजिक फेलियर सामने आया ईरान की इंटेलिजेंस का। अब भारत ने जो कुछ किया, मसाद ने जो कुछ किया, CIA ने जो कुछ किया, MI6 ने जो किया, जर्मन इंटेलिजेंस ने, फ्रांस की इंटेलिजेंस ने, ये सब वहां पे किसी न किसी से मौजूद है। कुछ अफगानिस्तान के भी ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ सेंट्रलेशन रिपब्लिक्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बाकायदा डायरेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं यहां पर। तो ये सब ने मिलकर जो ईरान के साथ जो इतना बड़ा हाथ हो गया है वो मेरा ख्याल है ईरान की आंखें खोलने के लिए काफी है। जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है यूथ उनके साथ है, मैं उस पर कोई हतमी तौर पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब जब ईरान ने खड़ा होकर दुनिया को साबित कर दिया है तो यूथ भी देख रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन ये कर रहा है और क्यों ये कर रहे हैं। वो भी तो अपने मुल्क की तबाही देख रहे हैं ना, क्या वो पसंद करेंगे कि जिन्होंने उस मुल्क की तबाही की है उनको दोबारा वो आने दें वहां पर। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त रजीम चेंज का जो उनका ख्वाब है वो शायद पूरा ना हो सके। हाँ, एक और चीज जो बड़ी अभी बार बार डिस्कशन भी हो रही है, क्या अमरीका इस तरीके से इसराइल को नुकसान पहुंचा है, क्या इसके लिए अमरीका जंग में कूदेगा? ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा सवाल है और अमरीका इसके बारे में सोच विचार तो हो रही है। पिछले मैंने पहले भी अर्ज की थी कि अमरीका के अंदर से भी बाहर ये आवाजें उठी थी कि ईरान पे हमला करना चाहिए रिजीम चेंज करने के लिए भी और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए भी। अब एक तो ये सिनेरियो है जो आपके सामने है, दूसरी तरफ क्या ईरान तन्हा है, ईरान के साथ कोई और खड़ा नहीं है? मैं ये समझता हूं और ये रिपोर्ट्स भी अभी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा कहा है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है वो समान फहम कर रहे हैं ईरान को। और भूलिए कि जब यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने चढ़ाई की थी तो ईरान ने बाकायदा उनको ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजीज और मिसाइल दिए थे उनको इस्तेमाल करने के लिए। क्या चाइना उनके साथ खड़ा होगा? चाइना ने बड़े वाजे तौर पर अमरीका को खबरदार किया है कि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जो आपके ख्याल में पिछले सदी में थी, अब दुनिया बदल चुकी हुई है। तो अमरीका के लिए भी ये क्या 22 है, हमला करे तब मरता है, ना करे तब मरता है। अगर नहीं करता तो इसराइल को नुकसान पहुंचता है, अगर करता है तो फिर ईरानियों के पास तो और कोई चारा नहीं है, क्या करेंगे ईरानी? क्या वो अमरीका हमला बर्दाश्त करके अपनी कैजुअलिटीज को बर्दाश्त कर लेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि जो स्प्रिंग लीडर ने ये बात की है, अगर अमरीका ने यह गलती की तो अमरीका के जो खित्ते में अड्डे हैं, अमरीका तक तो शायद ना पहुंच सके ईरानी, लेकिन जो उनके अड्डे हैं खित्ते में और जो ज्यादातर हमारे अरब भाइयों के मुल्कों में है, क्या उनको नुकसान नहीं पहुंच सकता? तो ये एक ऐसे जमा तफरी जारी है जो अगले चंद दिनों में वाजह हो जाएगी कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है।
बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी डिटेल में बताया। और मगर चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट एट द मोमेंट, क्योंकि अमेरिका को मेरा ख्याल है रशिया से भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो इस वक्त उभरती हुई ताकत है वो चाइना है, जिसमें IMF के मुतबादिल भी आ गया, उन्होंने ब्रिक भी बना लिया और भी बहुत सारी चीजें चाइना ने की, तमाम मुल्कों में उसकी पहुंच भी है, सपोर्ट भी कर रहा है। अमेरिका ने बराह रास्त अभी तक शमूलियत का जिक्र नहीं किया, मगर इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि इसराइल को बैकअप मगरिब से ही किया जा रहा है, यूरोप से किया जा रहा है और मगरिब से किया जा रहा है। अमेरिका, इट्स बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज है कि अमेरिका के 30 जहाजों ने फौजी तैयारे यूरोप मुंतकिल किए गए हैं। और इनमें से एक तो आपको बताइए उनका एक जो नतन्स का जौहरी सिस्टम है उसको तो इन्होंने नुकसान पहुंचा लिया, मगर जो फर्दो दूसरा वाला है वो काफी डीप डाउन है, उसके लिए जो अमेरिका के जहाज पहुंचने थे वो 30 जहाजों की मुंतकिली हुई है। अब अमेरिका अगर डायरेक्ट शरीक होता है, मीन वाइल इन्हीं दिनों में ही चाइना ने अपने 3 बहरी बेड़े भी बैरुल काहिर में लेके आ गया है। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने कल बड़ी जबरदस्त धमकी दी है, बिकॉज G7 की मीटिंग में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौजूद थे, उनकी मजीद फंडिंग यूरोप ने की है और डीप डाउन इन रशिया स्ट्राइक्स का उन्हें बकअप किया है। और रशिया कहता है कि अमेरिका इज टेकिंग वर्ड्स टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब अगर आप इसको मुझे एक्सप्लेन कर दें, इसका मकसद यह है कि चाइना भी इनडायरेक्टली अपने जहाज दो गए ईरान को सपोर्ट कर रहा है, रशिया एक बहुत बड़ा एलाय लूज कर देगा अगर ईरान का रजीम चेंज हो जाता है, तो अमेरिका इनको ब्लॉक करने के लिए इसराइल को हर तरह की मदद कर रहा है, मगर चाइना के 3 बेड़े भी मौजूद हैं। अब आप क्या कहेंगे? और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब
अमेरिका में है, और यकीनन अमेरिका पुश तो करेगा, अगर कनाडा को वो इतना पुश कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा आए तो दो झंडे अमेरिका और कनाडा का झंडा लगा के आ गया, ही नोज द टेक्निक हाउ टू पुश एंड मेक अदर्स बेंड, तो क्या पाकिस्तान चाइना को छोड़ देगा? मेरे तीन चार सवाल इकट्ठे आपकी तरफ।
देखिए, लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि भाई ये आर वी हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, पॉसिबिलिटी आप लोग नहीं कर सकते। जो जिस तरीके से अंधाधुन इसराइल और इसराइल को सपोर्ट करने वाले मुल्क लगे हुए हैं, अगर इस तरह जारी रहा तो रूस के लिए और चीन के लिए और दूसरी ताकतों के लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात कि क्या चीन या रूस ये बर्दाश्त करेंगे? अगर वो आज एग्जाम्पल रूस बर्दाश्त कर ले तो रूस का तो इस खत्म में वजूद खत्म हो जाएगा। सीरिया से पहले इसको निकाल दिया गया है, अब रूस आ जाके कहां पर रह जाएगा इस खत्म में? और अगर ईरान में ऐसी आके रजीम आ जाती है तो फिर आप देखिए रूस तो चार तरफ से घेरे में आ गया था, रूस फिर कहां जाएगा इससे? तो रूस को भी बड़ा वाजे है और प्यूटिन साहब को बड़ा वाजे है क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो इस पर अमल भी कर रहे हैं। चीन के लिए भी बहुत बहुत ही बड़ा सवाल है, अगर ईरान यहां से निकलता है, इसको तरह निकलता है, तो चीन की जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चीन ने जिस तरीके से उनका जो ऑयल एम्बार्गो था उसको छोड़ के चीन आया है इसके अंदर, और चीन जिस तरीके से अपने आप को घेरे में आने से बचाने के लिए जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लेके बैठा हुआ है, और जो सीपैक चल रहा है उसमें क्या ये उनका ये ख्याल है कि ये इससे खत्म कर देंगे तो क्या चीन इसको खामोश रह जाएगा? तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बड़े वाजे हैं इसमें, ना चीन खामोश रह सकता है ना रूस खामोश रह सकता है। जापान कोरिया इनके लिए मुश्किल है क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं अगर तेल की बंदिश होती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मगरबी दुनिया की कल्चरस में हैं तो सही, लेकिन वो उनको वो अहमियत नहीं दे पा रहा है। जब उनको बाकायदा किसी जगह से तकलीफ महसूस होती फिर उस पर बेचार दौड़ते हैं ये। और एक बहुत बड़ी अहम बात मैं बड़े अरसे से कर रहा हूं कि मगरबी दुनिया का खासतौर पर अमरीका का इन्फ्लुएंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से कम हो रहा है। अमरीका की जो डिक्लाइन है वो खुद अमेरिकन्स कह चुके हैं कि अभी लास्ट सेंचुरी थी अमेरिका की थी, अब ये नई सेंचुरी जो है ईस्ट की है, सेंचुरी है। और ईस्ट में जब आप देखते हैं तो फिर आपको पावर्स आपको नजर आती है सर उसमें। इसलिए डिक्लाइनिंग पावर विद द हेल्प ऑफ अदर डिक्लाइनिंग पावर लाइक ब्रिटेन लाइक फ्रांस लाइक जर्मनी, इनके पास ताकत भी है पैसा भी है, लेकिन जो इनका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है जो इनकी पहले दुनिया बात सुनती थी अब क्या वो सुनने को तैयार है? मेरा ख्याल है ये भी इनके लिए सवाल है, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। और एक बहुत अहम बात जो डेवलपमेंट हुई है जो पाकिस्तान का और इंडिया का स्टैंड ऑफ था, जिसमें इंडिया का ख्याल ये था कि जो अमरीका की बैकिंग है मगरबी दुनिया की बैकिंग है वो पाकिस्तान को घुटने टेकने मजबूर कर देंगे, तो उसका तो बड़ा उलट हो गया। उसका पाकिस्तान ने और चीन की जो टेक्नोलॉजी थी, चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर जो अपने आप को डेवलप किया था एक स्टेज पे आके, आपने देखा कि पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के अवाम ने भारत को उल्टा नुकसान पहुंचाया। अब ये भी दुनिया का वाजे हो गया कि चीन की टेक्नोलॉजी जिसके बारे में लोग मजाक उड़ाया करते थे, अब वो टेक्नोलॉजी नहीं है। चीन के पास भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो मगरब दुनिया के पास है, शायद उसके पास ज्यादा है उनके पास। तो इन सब के बावजूद अगर मगरबी दुनिया बजिद है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये किसी जंग शायद हो जाएगी और नुकसान फिर हमारा तो जो होगा ही होगा, कि मगरब दुनिया भी नहीं बचेगी इससे।
अगर रीजर अगर आप देखें तो मगरब को तो कोई यूरोप की बात कर लें, बरतानिया जर्मनी फ्रांस की आप बात कर लें या आप अमेरिका की बात कर लें, इनका कुछ भी नहीं। लड़ाई मिडल ईस्ट में हो रही है या रशिया डायरेक्टली लड़ रहा है, ना तो लड़ाई अमेरिका की जमीन के ऊपर हो रही है ना बरतानिया की जमीन पे हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने अपने इलाकों में लड़ाई बंद कर दी थी क्योंकि जर्मनी ने भी कीमत चुकाई थी, फ्रांस ने भी कीमत चुकाई थी, किसी हद तक कनाडा और अमेरिका भी इन्वॉल्व हुए थे। मगर अब भी अगर लड़ाई है तो उसी साइड के ऊपर है इनका, ये तो सिर्फ असला बेच रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वही खत्ता ही तबाह बर्बाद होगा।
देखिए आरफा, मैं बात तो शायद बड़ी कर रहा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि मैं इसमें बात करूं, लेकिन ये लड़ाई صرف ہم تک محدود نہیں رہے گی. یہ جب آگ لگے گی تو پھر جو مغربی دنیا ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یہ محفوظ نہیں رہیں گے. جاپان, کوریا محفوظ نہیں رہیں گے. یہ لڑائی وہاں تک جائے گی اور ان کا نقصان زیادہ ہوگا. ہم تو پھر بھی جو روڈیمنٹری قسم کا لائف سٹائل ہم گزار رہے ہیں تو ان کو دیے تو ایک دن بجلی چلی جائے تو بن کے بیٹھ جائیں گے لوگ سارے. تو یہ ان کی جو قومیں ہیں, جس سب اسرائیل کو دیکھا آپ نے, مطلب 67 کی جنگ بھی لڑی انہوں نے, 56 کی جنگ بھی لڑی, 73 کی جنگ بھی لڑی, لیکن آج جس طریقے سے اسرائیل چلا رہا ہے, جس طریقے سے وہاں پہ ان کے جو نقصان ہے وہ ہو رہا ہے اس کا, تو وہ کیا یہ مغرب دنیا برداشت کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دنیا کا یہ خیال تھا کہ ایران اتنے نقصان کے بعد بیٹھ جائے گا, لیکن دنیا یہ بھول گئی کہ 8 سال تک عراق کے خلاف, جو عراق کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل تھی, ایران نہ صرف لڑا, کھڑا رہا, بینتاب کیلٹیز برداشت کی, بینتاب نقصان برداشت کیا, الٹیمیٹلی عراق کو ٹیبل پہ آ کر ان کی بات ماننا پڑی. تو کیا یہ خیال ہے کہ ایسی قوم جو ایک تہذیب ہے, ایک باقاعدہ ان کا ایک ہسٹری ہے ان کی, کیا وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ تو یہ جو کلچرل سینا میرے خیال ہے اس میں بہت بڑی غلطی کر چکے ہوئے ہیں. اور یہاں میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم عریب, ان کی ٹرمپ صاحب کی دعوت پر ان کے ہاں لنچ پہ ملاقات ہے. یہ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی ڈائریکٹ ملاقات ہو رہی ہے امریکہ کے صدر سے. تو یہاں پر جو پاکستان بیشرز ہیں یا پاکستان کے اندر سے بھی جیسی آبادی ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب, جس آپ نے بھی کہا کہ وہ جناب عاصم عریب کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مثال دی جاتی ہے جنرل مشرف کی. اس وقت پوری دنیا ایک طرف تھی, پاکستان کے بڑا مشکل تھا کہ اس دنیا کے ساتھ نہ چلے. آج حالات بہت مختلف ہیں. پاکستان نے اپنے آپ کو ایک اس خطے کی اور ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر بھی, اور اس خطے میں اپنی اہمیت کو بھی دنیا کو جتا دیا ہے اس وقت. اور آج جب جناب عاصم عریب ٹرمپ صاحب سے ملیں گے تو بھارت اور پاکستان کا درمیان اسٹینڈ آف اور جو بات چیت ہے وہ تو ہوگی ہوگی. میرا خیال ہے ایران کے بارے میں جب بات ہوگی تو جناب عاصم عریب بڑے کلیئر ہیں اور پاکستان بڑا کلیئر ہے اس سلسلے میں. ہم اس قسم کی کسی جنگ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی ہم اپنی سرزمین کو کسی اور کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کو تیار ہے. اور اس لیے پاکستان نے بڑا واضح کہا ہے کہ اسرائیل کی سراسر یہ بدماشی ہے, اور اس سٹینڈ سے ان کا خیال یہ کہ پاکستان کا ہٹ جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اب وہ خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکے گا, کیونکہ حالات بہت مختلف ہیں. یہ مختلف پاکستان ہے اور یہ وہ پاکستان ہے جس نے پوری دنیا کو اس سوچ میں مجبور کر دیا ہے کیوں نہ پاکستان سے بات کر کے معاملات کو سلجھایا جائے. ہاں, پاکستان اس خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, اور خطے کے سعودی عربیہ کے ساتھ, ترکی کے ساتھ مل کر. تو وہ ڈیفینیٹلی پاکستان, اگر یہ اسکرین کی بات ہوتی ہے تو پاکستان اس میں آگے جانے کو بھی تیار ہوگا, کیونکہ ہمارا بارڈر اسلامی ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اس میں اس خطے میں امن ہونا اور خاص طور پہ ایران میں امن ہونا پاکستان کو بھی بڑا ضروری ہے.
بہت شکریہ سر. آئی ہوپ سو کہ اس سے پہلے بھی چائنا یہ فیل نہ کرے کہ ہم نے اس کو بٹرے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ امن رکھے, آمین. مگر یہ جو نیسٹی کنٹریز میں اس وقت جرمنی بڑا عجیب رول پلے کر رہا ہے, فرانس بڑا عجیب رول پلے کر رہا ہے, برطانیہ بڑا عجیب رول پلے کر رہا ہے, اور امریکہ تو نمبر اونو ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اور پاکستان تو اس وقت بالکل نیوٹرل ہے نا, وہ تو کسی کے ساتھ,
بالکل پاکستان کے ساتھ
ہے. الحمدللہ, بہت شکریہ سر, آپ کو بہت شکریہ. کوئی پیغام دے دیجئے گا اس موقع پہ. آف کورس میرے لیے تو بڑا فرسٹریٹنگ سچویشن ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور دنیا کے لیڈنگ پرسنالٹی ہی ہمیں غلط سائٹ پہ لے کے جا رہی ہیں. بنجامن نتنیاہو اور امریکہ اس وقت رجیم چینج دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور رضا پہلوی کے بیٹے محمد رضا پہلوی, ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف اسرائیل, ناؤ دے وانٹ ٹو برنگ ہم بیک ان ایران. اللہ کرے کہ لوگ اس سے کوئی عقل سیکھیں. حالانکہ بنجامن نتنیاہو کو خود اگر وہ ان جنگوں میں سے نکل جاتے